हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे 1 घंटे के लिए प्रवचन होगा 11 से 12 बजे तक, और 12 बजे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का राजभोग आरती होगा, और फिर उसके पश्चात सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। तो सबसे विनती है कि आप यहाँ पे आके बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए कथा में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे आज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। कितने लोग पहली बार आए यहाँ पे? तो यहाँ पे हर रविवार को ऐसा ये प्रोग्राम रहता है, तो 10:30 बजे यहाँ पे 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है। जैसे अभी आपने कीर्तन अटेंड किया होगा, 11 से 12 बजे तक यहाँ पे छोटी कथा होती है, और 12 से 12:30 महाआरती का प्रोग्राम आता है, और तत्पश्चात सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो आज जो हम विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय है चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो यहाँ पे अपने विग्रहों का दर्शन किया होगा, तो बीच में वृंदावन बिहारी है, कृष्ण है, उनके लेफ्ट श्रीमती राधा रानी है, और उनके राइट में कौन है? हाँ, बहुत बार जब गेस्ट पहली बार आते हैं यहाँ पे तो उनको पूछते हैं हम, तो बोलते हैं कि वो बलराम जी है, तो सबको लगता है बलराम जी है वहाँ पे, लेकिन ये जो यहाँ पे विराजमान है चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो उस समय स्वयं कृष्ण या उनके अवतार जो है वो इस धरातल पे प्रकट हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उसके आगे वाले श्लोक में भी बोलते हैं कि क्या क्या कारण है उनके अवतार लेने के। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। हर एक युग में वो आते हैं 3 कारण के लिए। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, साधु भक्त हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो असुरी लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने हेतु। तो ये 3 कारण से भगवान प्रकट होते हैं, तो हर एक युग में आते हैं। और ऐसे कितने युग हैं? टोटल 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे 4 युग है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे एक चतुर्युग को एक दिव्य युग बोला जाता है, और ऐसे 1000 दिव्य युग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक दिन यानी 12 घंटे, 12 घंटे का जो दिन है उसमें ऐसे 1000 दिव्य युग रहते हैं, और ब्रह्मा जी के वापस 12 घंटे जो है वो रात रहती है, तो उसमें भी उतना ही समय रहता है। तो इतना समय यानी 1000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4000 बार जो है भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस कलयुग में भी वो प्रकट हुए हैं, और विशेष करके ये कलयुग जो है, ये कलयुग बहुत ही विशेष बोला गया है। ये जो हम अभी जिस समय में हैं, इसको कलयुग बोला गया है। तो ये कलयुग जो बहुत ही विशेष है, इसको धन्य कली बोला गया है शास्त्र में। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में स्वयं कृष्ण जो है वही गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। तो इसलिए तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है ना। तो ऐसे वर्णन है कि देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ये जो हम जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये देवी धाम है। दुर्गा देवी जो है इसकी देवता है, अधिष्ठाती देवता है, और इसके ऊपर कैलाश धाम है, और उसके भी ऊपर जो है जो वैकुंठ धाम, जहाँ पे अनेक भगवान के अवतार, वहाँ पे उनके लोक है वहाँ पे। और उस वैकुंठ के भी परे जो है अयोध्या धाम, और उस अयोध्या धाम के भी परे जो है द्वारका धाम, और उस द्वारका धाम के परे क्या है, गोलोक वृंदावन। तो आप जाएंगे यहाँ पे, हमने एक प्रति वृंदावन बनाया है, आप जाके वहाँ पे टूर लेंगे उस वृंदावन का, तो आप देखेंगे जहाँ पे कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। तो वो गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा धाम है, और उस धाम से कृष्ण जो है वो इस दिव्य युग के द्वापर में प्रकट होते हैं, और इस द्वापर के बाद जो कली अभी है, इस कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, गौर अवतार। तो इस प्रकार से तो बाकी बाकी युगों में भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन बाकी युगों में वो आते हैं उनके अवतारों को भेजते वो, तो वो अवतार जो है, वो अवतार उनके जो बाकी धाम है वैकुंठ आदि, यहां से आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और ये कार्य करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जो साधन वो देते हैं, उस साधन को हम पालन करेंगे अपने जीवन में, तो हम उस धाम की प्राप्ति करेंगे। लेकिन इस कलयुग में जो साधन उन्होंने दिया है, उस साधन को अगर पालन करेंगे, तो हम किसकी प्राप्ति करेंगे, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है, तो ये सोच रहे, ये जब आते हैं तो वो कृष्ण भगवान सोच रहे। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे इषामि माम, कि आप सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण लो, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि आप मनोभाव से मुझे चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन ये कैसे करना है, भगवद गीता का ज्ञान तो दिया उन्होंने द्वापर युग में, अंत में, द्वापर के अंत में, लेकिन फिर भी लोगों को ये भगवद गीता कैसे अपने जीवन में उतारनी है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो ये सिखाने के लिए भगवान वापस आ रहे हैं, इस कलयुग में प्रकट हो रहे हैं, और विशेष करके वो सोच रहे, वो कृष्ण क्या सोच रहे, वो कृष्ण सोच रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। वो बोल रहे हैं कि ये पूरा जग जो है, ये ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, तो ये ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित हो गया है, और ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है, ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, तो वो भक्त जो है भगवान को स्वामी के रूप में देखता है, और मैं उनका सेवक हूं। भगवान जो है सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के रचयिता है, संहार करता है, जगत के ईश्वर है, उस भाव में देखता है। लेकिन वो भाव में क्या हो जाता है, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, तो उसमें जो प्रेम है वो प्रेम प्रेम क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, शिथिल यानी ठंडा हो जाता है वो। और वो कृष्ण बोल रहे कि ऐसा प्रेम मुझे जो है वो नाही मोर प्रीत, मुझे इतना भाता नहीं हो। तो इसलिए वही कृष्ण जो है वो आ रहे, आमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम वश्यामि नहि अदिन। तो तो बोल रहे कि हमारे ईश्वर माने अपन आके हीन। तो यहाँ पे जब आते हम तो यहाँ पे हम भगवान को देखते, कृष्ण भगवान यहाँ पे खड़े हैं तो उनको नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, खुद को हीन समझते हम, है ना। तो वो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो उनको क्या क्या अच्छा लगता है? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण प्राणपति यही भावे करे मोर शुद्ध भक्ति। वो बोल रहे कि मोर सखा मोर प्राणपति, ऐसे बोल रहे कि कोई व्यक्ति अगर मुझे बोलता है कि ये मेरे सखा है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे प्राणपति है, ये भाव में अगर कोई मेरे पास आता है तो वो शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है और वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो ये वृंदावन की महिमा है। तो वैकुंठ और आदि धाम में ये भाव नहीं है भक्तों के पास। वैकुंठ में वहां पे लक्ष्मी नारायण जी बैठे रहते हैं आसन पे और बाकी सब उनके भक्त आके उनको प्रणाम करके है प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, वेदों से जो है श्लोकों का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये उनको भाता नहीं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। वही अयोध्या धाम जो है, अयोध्या धाम में जो है भगवान वहां पे है श्री रामचंद्र के रूप में, लेकिन फिर भी वहां पे जो है वहां पे वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, सख्य भाव वगैरह। और बाकी द्वारका में भी जो है वहां पे भी इतना जो रस है, जो ब्रज का रस उन्होंने दिया है उसमें इतना आदान प्रदान नहीं है जितना वृंदावन का, वृंदावन की शुद्ध भक्ति में प्रेम में है। तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो एक पुराण में उसका वर्णन है कि नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे तो उस समय वहां पे प्रकट होते हैं उनका सिर जो था वो किसका था? सिंह का था, है ना। और उनका जो शरीर था वो शरीर कौन सा था? नर, है ना, इसलिए नर सिंह। तो वो जब अवतार में प्रकट होते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, इतना गुस्से में थे वो नरसिंह भगवान, इतने गुस्से में थे और उनको शांत कौन करेगा। तो बोलते हैं सबको कि जाके आप थोड़ा उनको शांत कीजिए, लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आप जाइए थोड़ा उनको शांत कीजिए, शांति नहीं हो रहे। जो हिरण्यकश्यपु है उनका वध कर देते हैं, उनकी आतड़ी निकालते हैं गले में डालते हैं फिर भी शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी को बोलते हैं आप जाके शांत कीजिए, लक्ष्मी बोलती है कि कौन है ये, मैंने अभी तक देखा नहीं ये रूप, मैं नहीं जानती कौन है ये, ऐसे बोलती है। और फिर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी उनके जो देवताओं के भी देव है तो बोलते हैं कि जाओ आप वो उनको थोड़ा शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी नहीं कर सकता उनको शांत। तो छोटे प्रहलाद को बोला जाता है, जो प्रहलाद महाराज एकदम छोटे थे 5 साल के रहेंगे, तो उनको बोलते कि आप जाके थोड़ा उनको जाइए उनके सामने। तो जाते हैं प्रहलाद और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको जब देख प्रार्थना करते हैं तो नरसिंह भगवान उनको उठाते हैं अपनी गोद में बिठाते हैं और उस समय पूरा शांत हो जाते हो। और उस समय बोलते प्रहलाद को आप डरते नहीं मुझसे? प्रहलाद बोलते हैं कि अपने पिता की गोद में कोई बच्चा बैठता है तो उससे डर लगता है क्या? नहीं लगता डर। तो पूरे अपने पिता को पिता के गोद में बैठे ऐसा अनुभव कर रहे थे। और उस समय नरसिंह भगवान सोच रहे कि कैसे प्रहलाद जो है, ये प्रहलाद एक एक पिता का सुख, है ना, पिता का सुख का अनुभव कर रहा है ये प्रहलाद, लेकिन मैं जो हूं मैं कैसा हूं? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, कि मैं जो हूं अजो अपि सन यानी मैं अजन्मा हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है। तो प्रेम कैसा है एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति? प्रेम जो है ये प्रेम का अनुभव करना है मुझे। और वो इच्छा उनके अंदर प्रकट हो जाती है और उसकी इच्छा के कारण जो अगला इसमें युग में आते हैं भगवान, वो क्या बन के आते हैं? श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं। और श्री रामचंद्र के रूप में आके वही श्री रामचंद्र अयोध्या से प्रकट होते हैं और वहां पे उनके जो माता पिता है कौशल्य देवी और दशरथ महाराज, उनसे वो प्रेम का अनुभव करते हैं, जो उनकी इच्छा थी, अपूरी इच्छा थी, उसको पूरी करते हैं। और वहां पे बहुत सारे सुंदर बाल लीलाएं करते हैं वहां पे। और फिर उस समय जब वो वन में जाते हैं तो उस वहां पे जो दंडकारण्य के ऋषि थे वो जब देखते हैं इनको, श्री रामचंद्र जी को, तो सब खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो उनकी सुंदरता देख के वो बोलते हैं कि हे रामचंद्र, हमें ये शरीर जो है ऋषि का, पुरुष का, ये शरीर हमको त्याग देना है और हमें स्त्री का शरीर आप प्रदान कीजिए और हमसे विवाह कीजिए आप। तो उस समय श्री रामचंद्र बोलते हैं कि मेरा तो इस अवतार में व्रत है, एक पत्नी व्रत, और मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन अगले युग में मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, ऐसा बोलते हैं। और फिर उनको लग रहा था मन में कि अरे, ये दंडकारण्य के जो ऋषि है उनकी इच्छा में पूरी नहीं कर पाया। और फिर और एक उनके मन में इच्छा प्रकट होती है, वो इच्छा थी कि कैसे हर एक व्यक्ति, मेरा यहां पे कोई सखा नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, हर एक व्यक्ति मेरे चरणों में गिर जाता है, तो ये सखा का अनुभव क्या है, मित्रता का एक अनुभव, प्रेम का, वो मुझे पाना है। तो वो उनकी इच्छा उनके मन में प्रकट हो जाती है। और फिर जब वो दोनों इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगले युग में स्वयं कृष्ण भगवान आते हैं, और वहां पे जो एक सखा का, एक मित्रता का जो अनुभव है, अपने मित्रों के साथ प्रेम का आदान प्रदान जो है उसको अनुभव करते हैं, और जो दंडकारण्य के ऋषि थे वही ऋषि जो है बाद में 16,000 रानियां बन के आती हैं और उनसे विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से वो इच्छा उनकी पूरी करते हैं। लेकिन कृष्ण जब आते हैं, वही अवतारी कृष्ण जब आते हैं, उनके मन में और तीन इच्छाएं प्रकट हो जाती है। तो वो तीन इच्छाएं कौन सी है? तो वो बोलते हैं, वो उसके लिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तो उसमें बताते हैं कि वो तीन इच्छाएं जो है वो क्या है। वो बोलते हैं कि श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशो वान ये वा। वो बोल रहे हैं कि श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशो वान ये वा, कि ये राधा रानी जो है इसके प्रेम की महिमा क्या है वो मुझे जानना है। तो प्रेम की महिमा का मुझे वो जानने के लिए वो कृष्ण जो है, वो कृष्ण यहाँ पे अवतरित होते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर लिखते हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो है, ये कृष्ण भगवान प्रेम के सागर है, प्रेम के विषय है वो, और आनंद के सागर है, पूर्णानंद है, आत्माराम है, पूर्ण काम है। लेकिन वो कृष्ण जो है सबको अपने बांसुरी से, अपनी सुंदरता से हर एक जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो वो कृष्ण सोच रहे हैं ऐसा क्या है मेरे अंदर, है ना, जो इतना सबको आकर्षित करता है, और जो मुझको ज्यादा, सबसे ज्यादा अनुभव करता है, जो मेरा सबसे ज्यादा आनंद लेता है, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है वो मेरी सेवा करती है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वामी और सेवक है, तो सेवक जब स्वामी की सेवा करता है तो किसको ज्यादा आनंद मिलता है? हाँ, स्वामी को आनंद मिलेगा ना। कोई व्यक्ति खाली बैठा है और उसको कोई दूसरी व्यक्ति सब उसके लिए खाना बना रही है रसोई घर में, उसको परोस रही है, फिर वो सब होने के बाद बर्तन भी धो रही है, सब कुछ कर रही है उसके, है ना, उसको खाली आनंद लेना है बस। लेकिन कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है, ये राधा रानी मेरी सब सेवा कर रही है, और जो मुझे आनंद मिल रहा है उससे कई लाख गुना आनंद श्रीमती राधा रानी को मिल रहा है, श्रीमती राधा रानी को प्राप्त हो रहा है, 10,000 गुना आनंद उसको मिल रहा है। तो ऐसा उसके उसको क्या है, उसके अंदर वो प्रेम की महिमा क्या है उसकी, वो मुझे जानना है। वो उसका प्रेम जो है सब जगह व्याप्त है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी उसका प्रेम कैसा है, वो हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, हमेशा कैसे हो रहा है, हर एक क्षण वो प्रेम बढ़ रहा है। उसका प्रेम सर्वोत्तम है। तो कोई कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च, सबसे सबसे सर्वोच्च स्तर पे है, तो उस व्यक्ति को अभिमान होता है, गर्व होता है। लेकिन श्रीमती राधारानी का प्रेम सर्वोच्च सर्वोत्तर होने के कारण भी उसके अंदर कुछ भी गर्व नहीं है, पूरी तरह से नम्र है वो। तो ऐसा कृष्ण भगवान सोच रहे थे। तो श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो वान ये वा, और फिर आगे बोल रहे कि स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय, और मेरी ऐसी क्या मधुरता है मेरे अंदर जो सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो कोई फूल है, बहुत ही सुगंधित फूल है, उसके अंदर बहुत ही गंध से भरा हुआ फूल, उसके अंदर बहुत सारी तितलियां, बहुत सारे भौरे उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं उस फूल की तरफ। लेकिन उस फूल को पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर जो गंध है, सुगंध है, वो क्या है जो इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं। वो खुद को, खुद का स्वाद नहीं ले पा रहा है वो। तो उस फूल को क्या बनना पड़ेगा? भौरा बनना पड़ेगा, तभी खुद का स्वाद ले पाएगा। तो इसलिए वही कृष्ण सोच रहे कि क्या है मेरे अंदर की जो मधुरता है, उस मधुरता के जिससे कि सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो मुझे अनुभव कर रहा है। तो ऐसा वर्णन है कि कृष्ण जो है, कृष्ण एक बार द्वारका में थे, और द्वारका में एक रत्नों से जड़ित एक जो खंभा था, उसमें उसके अंदर खुद की परछाई देखते वो। और जब परछाई देखते तो देखते सोच रहे थे कि ये इतनी सुंदर व्यक्ति कौन है। खुद की सुंदरता को ही देख के वो इतने आकर्षित हो जाते हैं, और सोच रहे थे कि कौन है ये। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कैसे कृष्ण माधुर्य रे एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कर रहे चंचल। तो कृष्ण की मधुरता जो है उसका एक बहुत ही स्वाभाविक बल है। क्या बल है वो? कृष्ण आदि नर नारी कर रहे चंचल। कृष्ण खुद उस सुंदरता के प्रति आकर्षित, वो मधुरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और बाकी फिर नर नारी उनका क्या कहना फिर। तो इस प्रकार से, और फिर आगे बोलते हैं सौख्यम चास्य मद अनुभवता। तो बोल रहे हैं कि ये राधारानी का, जो राधारानी को मेरी सेवा करके क्या आनंद प्राप्त होता है वो मुझे अनुभव करना है। तो तीन कारण है ना, राधारानी की प्रेम की महिमा, दूसरा यानी मेरे अंदर जो मधुरता है उसको मुझे चखना है, और राधारानी को जो मेरी सेवा करके उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो मुझे चखना है। तो ये तीन कारण से जो है तद्भावाढ्य समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो वो कृष्ण जो है, वो कृष्ण अवतरित हो जाते हैं इस कलियुग में गौर सुंदर। तो वही श्याम सुंदर जो है, वो श्याम सुंदर क्या बन जाते हैं? गौर सुंदर बन के इस कलियुग में प्रकट हो जाते हैं। और उसमें बोलते हैं कि ये कृष्ण जो है, ये राधारानी और कृष्ण का प्रेम क्या है? राधा कृष्ण प्रणय महिमा की, ये बोल रहे हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लाधिनी शक्ति रसमात। तो ये प्रेम जो है राधा और कृष्ण का, ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये क्या है? लाधिनी शक्ति रसमात। तो भगवान की जो लाधिनी शक्ति है, वो लाधिनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधारानी जो है उसका प्राकट्य है प्रेम है। और एकात्माना वापी भूई पूरा देह भेदम गतो। तो और ये जो राधा और कृष्ण जो है, ये कैसे है? एकात्माना, दोनों एक ही आत्मा है। आत्मा है कि लेकिन देह भेदो, उनका शरीर क्या हो गया है? दो शरीर बन गया है, आनंद लीला का विस्तार करने के लिए। लेकिन चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। लेकिन वही राधा और कृष्ण जो है वो क्या बन जाते हैं इस कलयुग में? चैतन्याख्यम, स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस कलयुग में आते हैं। और बोलते हैं कि राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो इस कलयुग में राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो यहां पे बहुत सुंदर बताया कि कृष्ण जो है, कृष्ण स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वरूप है, स्वयं कृष्ण है वो, लेकिन राधा भाव द्युति, तो राधा, राधा रानी का भाव भी है और राधा रानी की द्युति यानी कांति, दोनों को धारण किया उन्होंने। तो इस प्रकार से, तो यहां पे इस ये जो कृष्ण है, अवतारी कृष्ण जो है, गौर सुंदर जो है, ये इनका पर्दा पर्दा जो है भारी हो गया है, राधा रानी के, राधा रानी का पर्दा इसमें भारी हो गया, क्योंकि राधा रानी का भाव भी है और राधा रानी की क्या है, द्युति भी है, कांति भी है, तो दोनों को लेके आते हैं, इसलिए गौर सुंदर है ना। तो यहां पे श्याम सुंदर नहीं है, वो कौन है? गौर सुंदर, क्योंकि राधा रानी भी तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी जो है कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी है वो, है ना, तो सुवर्ण अंग है उनका। तो यहां पे भी चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौर अंग में प्रकट हुए हैं यहां पे। तो इस प्रकार से, तो ऐसा वर्णन है कि कैसे जब रामलीला में, जब श्री रामचंद्र वनवास में थे, तो उस समय अपना धनुष और बाण लेके जा रहे थे, तो जो सीता देवी है, सीता देवी पूछती है श्री रामचंद्र जी को कि आप ये धनुष और बाण लेके घूम रहे हैं, आप कभी इसका प्रयोग भी करते हैं क्या? ऐसे बोल रही है। तो श्री राम, क्योंकि अभी तक उनको कभी प्रयोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ पे श्री रामचंद्र को लगता है कि अभी ये बोल रहे हैं तो प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, दिखाना पड़ेगा थोड़ा। तो उस समय जब खर और दूषण जब आक्रमण करते हैं उनके ऊपर 14,000 असुरों के साथ, तो उस समय लक्ष्मण जी बोलते हैं श्री रामचंद्र जी को कि हे राम, कि आप क्या कीजिए, सीता और आप चले जाइए गुफा में, मैं देखता हूं इनको, मैं हैंडल कर लेता हूं ये 14,000 जो असुर है उनको। और श्री रामचंद्र बोलते हैं नहीं नहीं, मैं इनको हैंडल करता हूं, आप चले जाओ यहां से। और उस समय श्री रामचंद्र जो है, वो श्री रामचंद्र वहां पे अकेले जो है 14,000 असुर जो है खर और दूषण उनका संहार करते हैं। तो इस प्रकार से जब सीता देवी आती है, सीता देवी देखती है श्री रामचंद्र जी का बल, तो उनको बोलती है कि, उनको बहुत ही दया आती है, वो बोलती है कि आप वचन लो कि आप कभी ये अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसे बोलती है। लेकिन श्री रामचंद्र बोलते हैं कि इस अवतार में तो मैं ये वचन नहीं ले सकता, लेकिन अगले युग में मैं जब आऊंगा तो जरूर ये वचन देता हूं मैं कि उसमें मैं कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो जब स्वयं कृष्ण जब आते हैं, तो उस समय कृष्ण भगवान कभी अपना अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। तो जब पूतना आती मारने के, तो कृष्ण कैसे उनका वध करते हैं? अपने ओठों से ओठों का प्रयोग करके वो जो पूतना थी उसको मार देते हैं। जब शक्टासुर आता है, तो शक्टासुर का वध कैसे करते हैं? जो बैलगाड़ी के अंदर जिसने प्रवेश किया था, तो केवल अपने चरणों का स्पर्श करके जो शक्टासुर जो था उसका वध कर देते हैं। जो त्रिणावर्त था, त्रिणावर्त का वध कैसे करते हैं? केवल अपने हाथों का उपयोग करके। तो इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग अपने शरीर के जो अंग है उनका उपयोग करके असुरों का वध कर रहे हैं। तो उस समय राधा रानी पूछ रही है, अरे आपने तो वचन दिया था कि आप कभी असुर शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। तो बोलते हैं कि मैंने वचन दिया था कि अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो इनको तो मैं मारने के लिए कोई अस्त्र और शस्त्र उठाया नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप किसी असुरों का संहार नहीं करेंगे। तो उस समय वो सोच रही थी कि कैसे ये कृष्ण जो है, कृष्ण मेरे होते हुए भी ये सब असुरों का वध कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तभी रुकेंगे जब मैं इनके हृदय में प्रवेश करूंगी और हम दोनों एक बन जाएंगे और ये यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। और फिर अगले युग में वही कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी को भाव लेके यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो हमने देखे तीन कारण उसके, उनके अंदर जो तीन कारण प्रकट होते हैं, उस तीन कारणों को पूर्ण पूर्णता करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु है ना, क्योंकि कृष्ण जो है एक माता के समान है, पिता के समान है, लेकिन और राधा रानी जो है एक माँ के समान है ना। तो माता का प्रेम जो है अपने पुत्र के प्रति ज्यादा रहता है ना। तो भले राम, श्री रामचंद्र कृपालु है, रामचंद्र जब आते हैं तो बोलते हैं सकृत एव प्रपन्नो प्रपन्नो अस्मि तवास्म इति च याचते, कि कोई अगर एक, कोई एक बार भी मेरे आकर चरणों में आकर बोलता है कि हे रामचंद्र मैं आपका हूं, तो श्री रामचंद्र बोलते हैं कि मैं उसको क्या करता हूं, शरण दे देता हूं। जब विभीषण आए थे तो विभीषण आके उनके चरणों में गिर गए, तो सबको पूछ रहे थे श्री रामचंद्र कि क्या करें, ये विभीषण को शरण देनी है कि नहीं देनी। तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इनको शरण नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कांटे के झाड़ में कभी जो है अच्छे फल कभी आते हैं क्या, तो इसका भाई भी ऐसा है, इसकी बहन भी ऐसी है, तो ये कैसे अच्छा होगा। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, इनको शरण देनी चाहिए हमको, और श्री रामचंद्र उनको शरण देते। और उसी समय श्री रामचंद्र बोलते हैं कि उनको लंकाधिपति बना देते हैं, लंका का राजा बना देते हैं उनको इस प्रकार से। और सब लोग बोलते हैं कि अरे अभी तक तो लंका का राजा तो रावण है, वो बैठा है वहां पे। लेकिन श्री रामचंद्र बोलते हैं कि अगर वो रावण भी आकर अगर मेरी चरणों की शरण लेगा तो मैं भी उसको शरण दूंगा। और बोलते हैं कि फिर उसको क्या, उसको किधर का राजा बनाएंगे फिर आप? तो श्री रामचंद्र बोलते हैं कि उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। और बोलते हैं कि अरे अयोध्या का राजा तो भरत महाराज वहां पे बैठे हैं, अयोध्या का राजा, राजा बन के। लेकिन श्री रामचंद्र बोलते हैं कि भरत को मैं वैकुंठाधिपति बना दूंगा, वैकुंठ का राजा बना दूंगा। लेकिन वैकुंठ का राजा तो आप है। तो श्री रामचंद्र बोलते हैं कि अभी भी एक स्थान है जहां पे मुझे, जिस राज्य से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, और वो है हनुमान जी का हृदय, है ना, वहां पे मैं राज करूंगा। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान बहुत ही कृपालु है, श्री रामचंद्र बहुत ही कृपालु है, कृष्ण भगवान बहुत ही कृपालु है, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो शक्ति उनसे भी ज्यादा कृपालु है, है ना, वो शक्ति उनसे भी ज्यादा कृपालु। लेकिन और इस अवतार में, गौरांग महाप्रभु के अवतार में, वही शक्ति जो है उनका भाव लेके, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके और उनकी कांति लेके कृष्ण प्रकट हुए हैं। स्वरूप केवल कृष्ण का है लेकिन भाव और कांति जो है श्रीमती राधा रानी की है, इसलिए गौरांग महाप्रभु जो है वो उनसे भी दयालु है। बाकी सब नाम, बाकी सब, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण का नाम जो है वो, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, भक्तों के प्रति कोई व्यक्ति अपराध करती है, या हर दिन सुबह मंगल आरती में हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, ये नाम जप करने से पहले ये नाम अपराध पढ़े जाते हैं, तो ये नाम अपराध अगर हम करेंगे तो ये जो भगवान का नाम है, नाम प्रभु जो है, उनकी कृपा नहीं मिलेगी हमको, उनकी कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि अपराध कर रहे हैं हम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का नाम ऐसा है, अगर वो नाम हम लेंगे लेकिन उस नाम में कोई अपराध का गणन नहीं है, है ना, तो उस व्यक्ति को तुरंत वो प्रेम जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से, तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम में कुछ अपराध जो है उसका कुछ गिनती नहीं है उसके अंदर। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे। तो इस प्रकार से, तो बहुत ही करुणा अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट होते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है, वो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकार जाचे। तो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकार जाचे, तो इस कलयुग में जो ब्रह्मा जी, उनको भी जो दुर्लभ प्रेम है, उस दुर्लभ प्रेम को वो इस कलयुग में सबको दे रहे हैं। सोचिए, दीनहीन पतित, तो कोई विचार नहीं कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जो है, जब अवतरित होते हैं, प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किचु ना करे विचार। तो वो नित्यानंद प्रभु जो है, प्रेम में इतने मत्त है, वो इतने मत्त है कि कोई विचार ही नहीं कर रहे किसको, वो खुद प्रेम, वो जो पंचतत्व है, वो पंचतत्व उस प्रेम को पान कर रहे हैं। गोलो कह रहे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन के रूप में ये जो गोलोक का प्रेम, जो प्रेम है, वो प्रेम इस कलयुग में प्रकट हुआ है, उसको लेके आए हैं, तो उसको पान कर रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। वो प्रेम में मत है वो। तो जो कृष्ण बलराम दो बन के आए थे, इस कलयुग में ये पांच बन के आए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तियम। भक्त रूप, स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आते, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु है, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर जो है, और भक्त शक्ति जो है गदाधर पंडित। तो पांच बन के वो यहाँ पे इस प्रेम को खुद चक रहे हैं और लोगों को बांट रहे। प्रेम में इतने मत्त है वो कि किसका विचार नहीं करे। उत्तम अधम कोई है, कोई इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पात्र है नहीं है, कुछ विचार नहीं कर रहे। तो आध्यात्मिक जीवन में हमको, अगर आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ देखा जाता है कि उस व्यक्ति की पात्रता है कि नहीं उस आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, जैसे बहुत सारे मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और निष्काम कर्म योग है, बाकी सब जो योग मार्ग है, उसमें सब पात्रता देखी जाती है कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए उसका अधिकार है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो भक्ति मार्ग में ये चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, उसमें कुछ अधिकार देखा नहीं जा रहा है, सबको ये दिया जा रहा है, सबको ये खुले आम सबको बांटा जा रहा है कि लीजिए, आप इसको लीजिए। तो इस प्रकार से, तो वो चैतन्य महाप्रभु जिसका वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करते हैं, तो बोलते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। वो बोल रहे हैं कृष्ण वर्णम, हमेशा जो इस कलयुग में जो भगवान अवतरित होने वाले हैं, वो क्या करेंगे, कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, हमेशा कृष्ण का नाम लेंगे। त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनका वर, उनकी जो कांति है, वो कांति अकृष्णम है, श्याम वर्ण नहीं है, वो गौर वर्ण है। तो इस प्रकार कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और अपने जो स अंग और पार्षद जो है, तो उनके साथ अवतरित हुए हैं। तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर है, इतने, तो उनकी सुंदरता से ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब देखते हैं उनको जगन्नाथपुरी में, बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको देखते हैं तो उन बोलते कि अरे इतने सुंदर सन्यासी है ये, तो इनको ये ज्ञान जो है, वेदों का ज्ञान इनको होना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो है पतन नहीं होना चाहिए, इतने सुंदर दिखते हैं ये सन्यासी, तो अपने सुंदरता से ही सबको आकर्षित कर लेते। और फिर बोलते हैं कि कैसे, कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर, और इस कलयुग में जो है वो संकीर्तन यज्ञ की शुरुआत करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा, और जो सुमेधसा जो है, जो बुद्धिमान लोग जो है इसको अपनाएंगे, इस विधि जो है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो विधि है उसको अपनाएंगे। तो इस प्रकार से, और कैसे बताया गया कि श्री रामचंद्र जो है, श्री रामचंद्र से भी ज्यादा जो दयालु है, कृष्ण भगवान है। श्री रामचंद्र जब आते हैं तो श्री रामचंद्र और अपने भक्तों में जो आदान प्रदान, प्रेम का जो आदान प्रदान है, वो उससे कई गुना ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान जो है कृष्ण करते हैं। कृष्ण जब अपने भक्तों के साथ उनके उनके दूत बन जाते हैं, उनके सारथी बन जाते हैं, भगवद गीता में हम देखते हैं कृष्ण जो है, कृष्ण सारथी बन के, भगवद गीता की शुरुआत में क्या होता है, कृष्ण जो है सारथी बन के वहां पे प्रवेश करते हैं भगवत उस युद्ध स्थल भूमि पे, और वहां पे जो है वो सारथी बने हुए अपने भक्तों के। तो इस प्रकार से बहुत अपने भक्तों की सेवा करने में उनको आनंद है, लेकिन उनसे भी दयालु अवतार जो है ये चैतन्य महाप्रभु का। तो इस प्रकार से सेई द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला ग्रंथी पराइला संसारे। तो बोल रहे हैं सेई द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे कि उन्होंने जो कीर्तन की शुरुआत की है वो कीर्तन जो है आचंडाल यानी जो जो कुत्ते का भी मांस भक्षण करते हैं वो लोगों को भी उन्होंने जो है ये प्रेम को दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार से और नाम प्रेम माला ग्रंथी पराइला संसार, और ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो माला है, ये जो माला को लेके आए, जैसे फूलों की माला होती है तो फूलों की माला में वो धागा नहीं दिखता हमको, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो है इस कलयुग में ये हरे कृष्णा महामंत्र के, हरे हरे कृष्णा के महामंत्र के जो नाम है, ये नाम की माला लेके आए हैं। तो उसमें, और ये माला कैसी है, नाम प्रेम माला, और ये केवल भगवान के नाम का जप करके क्या होगा, उसके अंदर खाली वो नाम दिख रहे हमको, लेकिन वो नाम नाम को पकड़ने वाला क्या है, उनका प्रेम उसमें छुपा हुआ है। तो केवल भगवान के नाम के जप करते 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 हमें क्या प्राप्त होगा, भगवान के प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। नाम प्रेम माला ग्रंथी पराइला संसारे, तो उन्होंने वो पहना है, वो जो माला है हमारे गले में डाली उन्होंने। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बहुत ही सुलभ विधि जो है, ये सुलभ विधि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आके हमें देते हैं। तो हमें केवल उसको क्या करना है, स्वीकार करना है, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे हम। जय श्री कृष्ण चैतन्य, अनाउंसमेंट है,
हरे कृष्ण। अभी 12 बजे भगवान की महाआरती होगी, और महाआरती के पश्चात 12:30 बजे हमारे अन्न क्षेत्र में सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। सबको जो कूपन मिला है उस कूपन को उपयोग करके वे अन्न क्षेत्र में जाके महाप्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कीर्तन होगा और कीर्तन के पश्चात सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था अन्न क्षेत्र में है। तो ध्यान दीजिए, ललिता भवन में आज प्रसाद नहीं है, आज प्रसाद अन्न क्षेत्र में है जो श्रीनाथजी कैफे के बाजू में है। तो उस अन्न क्षेत्र में सबके लिए प्रसाद होने वाला है। हरे कृष्णा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरा भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरा भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरा भक्त वृंद
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरा भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय श्री नाम संकीर्तन की जय। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते अचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम, कि आने वाले समय में हर एक पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं, पृथ्वी के हर एक नगर और ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। और उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो है ये पाश्चात्य देश में गए, और इन्होंने आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व भर में दुनिया के हर एक शहर में जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन और उनका जो मंदिर है गौरनिताय जो है वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे उसका प्रचार प्रसार और भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे सुंदर राजभोग आरती महाआरती होगी, तो हम सब खड़े हो जाएंगे और वहाँ पे आरती का दर्शन करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वात्म हरि प्रभु। प्रभु जी के अब थोड़ी सी पहचान करा देंगे। प्रभु जी बहुत सालों से यहाँ पे गोवर्धनी कॉलेज में सेवा कर रहे हैं, विशेष करके प्रभु जी रिसेप्शन में सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी डानो और कई भागों में जाके कृष्ण भावनी का प्रचार करते हैं। इस कीमती समय में प्रभु जी ने समय निकाला और अपन का जो टॉपिक जो है चैतन्य महाप्रभु कौन है, वास्तविक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है ये बता के प्रभु जी ने अपन को ऐसा बहुत बहुमूल्य ज्ञान सब प्रदान किया है। इसके लिए हम प्रभु जी का तीन बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसके बाद अब सभी लोग जाएंगे भगवान की आरती के लिए। हरे कृष्ण।